नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के चौथे संकल्प पर एक गहरी और व्यावहारिक चर्चा करने वाले हैं।
जी,
संकल्प है इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना?
हाँ, पहली बार में तो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात है।
बिल्कुल, लेकिन आज हमारा मकसद है इसकी परतें खोलना और ये समझना कि ये चारों संयम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मतलब एक क्रांति ला सकते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार संयम ही वो जीवनी शक्ति है जो मनुष्य को, आप कह सकते हैं कि, भीतर से खोखला होने से बचाती है।
एक तरह का आंतरिक कवच।
हाँ, एक आंतरिक कवच जो हमें रोगी और दुखी होने से बचाता है।
तो चलिए इस कवच को बनाने की विधि समझते हैं। इस चर्चा का लक्ष्य ये जानना है कि ये चार संयम असल में हैं क्या और इन्हें अपनी आदतों में ढालकर हम अपने व्यक्तित्व, परिवार और समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सत्संकल्प में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है। संयम की तुलना एक युद्ध से की गई है, अपने ही भीतर का महाभारत।
हाँ,
वाह, अपने ही भीतर का महाभारत मतलब ये कोई बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद की आदतों और इच्छाओं से संघर्ष है। इसका गहरा अर्थ है अपनी पुरानी गहरी जमी हुई आदतों और पशु प्रवृत्तियों से जूझना।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन एक युद्ध स्थली है जहां हमें हर पल प्रतिकूल विचारों, परिस्थितियों और अपनी ही कमजोरियों से लड़ना पड़ता है।
हर पल।
जी, और इस संग्राम में संयम ही वो दिव्यास्त्र है जो हमें विजयी बनाता है, और जो इस युद्ध से भागता है या हार जाता है,
तो उसका परिणाम होता है असंयम।
बिल्कुल, और वो अपने साथ दीनता, दरिद्रता और अनगिनत रोग शोक लेकर आता है।
और मुझे लगता है आज के जमाने में ये लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है। ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, हर तरफ से कुछ न कुछ हमें अपनी ओर खींच रहा है।
बहुत ज्यादा।
ऐसे में खुद से लड़ना तो वाकई एक महाभारत जैसा ही है।
इसीलिए सत्संकल्प कहता है कि जीवन देवता की उपासना तभी ठीक से हो सकती है जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में यहाँ वहाँ बहाना छोड़कर उसे सृजनात्मक कामों में लगाएं।
तो अगर ये एक युद्ध है तो हमारे हथियार क्या हैं? हमारी शक्तियां कौन सी है जिनसे हम लड़ेंगे?
बहुत अच्छा सवाल है। सत्संकल्प हमारी चार मूल संपदाओं की पहचान कराता है, इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और धन शक्ति।
इंद्रिय, समय, विचार और धन।
हाँ, ये हमारे जीवन की चार सबसे बड़ी पूंजी हैं।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इनमें से तीन, इंद्रिय, समय और विचार, तो हमें ईश्वर से मुफ्त में मिली है, विरासत में।
हाँ, ये हमें विरासत में मिली दैवी विभूतियां हैं, और चौथी यानी धन शक्ति इन्हीं तीनों के सही इस्तेमाल और हमारे पुरुषार्थ से अर्जित की जाती है।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो इन शक्तियों को भगवान की दी हुई पूंजी मानकर इनका सही नियोजन यानी सही इन्वेस्टमेंट करता है, वो इस अभावों से भरे संसार में रहते हुए भी कभी अभाव में नहीं रहता।
तो चलिए इन चारों पूंजियों का सही इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इस पर एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे मुश्किल संयम से, इंद्रिय संयम।
जरूर, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन सत्संकल्प इन 10 में से 2 पर सबसे ज्यादा जोर देता है।
सिर्फ 2 पर?
हाँ, पहली है जिह्वा यानी हमारी जीभ, और दूसरी है जननेन्द्रिय।
10 में से सिर्फ इन 2 पर ही इतना जोर, बाकी 8 का क्या?
क्योंकि ये दोनों हमारे जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को संभालती हैं। जिह्वा का सीधा संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से है, और जननेन्द्रिय का सीधा संबंध हमारे मनोबल से है।
शरीर और मन।
बिल्कुल, एक शरीर को साधती है, दूसरी मन को। देखिए, स्वाद के लोभ में हम अक्सर ऐसी चीजें खा लेते हैं जो शरीर के लिए जहर की तरह है।
हाँ,
स्वाद स्वाद में भोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है और वहीं से अनगिनत रोगों की शुरुआत होती है।
ये तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा तला भुना खा लिया तो पूरा हफ्ता पेट गड़बड़ रहता है, और आजकल तो फूड ब्लॉगिंग और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जमाने में
हाँ,
जिह्वा पर संयम रखना और भी मुश्किल हो गया है।
एक क्लिक पर कुछ भी हाजिर है।
बिल्कुल,
इसीलिए जिह्वा पर नियंत्रण का मतलब है शरीर पर नियंत्रण, और इसी तरह जननेन्द्रिय का संयम हमारे मानसिक बल को, हमारी संकल्प शक्ति को अटूट बनाए रखता है।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसने इन दो इंद्रियों को साध लिया उसने मानव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चाबी पाली।
इंद्रियों पर काबू पाना तो एक अंदरूनी लड़ाई है, ये समझ में आता है, लेकिन समय का वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, बस रेत की तरह फिसलता जाता है। इस पर संयम बरतने का क्या मतलब हो सकता है?
सत्संकल्प समय को ईश्वर प्रदत्त संपदा कहता है। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी हर रोज एक निश्चित मात्रा हमारे खाते में जमा होती है, चाहे हम अमीर हों या गरीब। जो व्यक्ति इस खजाने को संभालने में ढील बरतता है वो निश्चित रूप से दो शत्रुओं का शिकार हो जाता है, आलस्य और प्रमाद।
आलस्य और प्रमाद, ये शब्द हम अक्सर एक साथ इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे लगता है इनमें कोई गहरा अंतर है।
हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। आलस का अर्थ है शारीरिक श्रम से बचना, शरीर में ताकत होते हुए भी काम से जी चुराना,
मतलब बिस्तर पर पड़े रहना।
जी, और प्रमाद का अर्थ है मानसिक जड़ता। शरीर तो शायद काम कर रहा हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, निरर्थक चीजों में उलझा हुआ है।
अच्छा, तो आलस्य हुआ सुबह जिम जाने के लिए बिस्तर से न उठ पाना, और प्रमाद हुआ जिम में कसरत करते हुए भी दिमाग में ये सोचना कि घर जाकर क्या खाना है।
एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने।
और आज के डिजिटल युग में तो प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है। फोन उठाते ही पता नहीं चलता कि कब आधा घंटा सिर्फ रील्स देखने में निकल गया।
बिल्कुल, और इसका परिणाम ये होता है कि जो समय देवता की इस तरह अवहेलना करते हैं, सत्संकल्प उन्हें अल्पजीवी कहता है।
अल्पजीवी, कम उम्र वाले?
नहीं, चाहे उनकी उम्र 100 साल ही क्यों न हो, अल्पजीवी मतलब जिन्होंने अपने जीवन को निरर्थक ही बिता दिया।
वाह, सत्संकल्प में महाभारत का एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है, वो क्या है?
हाँ, एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, जब वेदव्यास जी को महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ कम समय में लिखना था तो उन्होंने लिखने के लिए गणेश जी की सहायता ली। काम समय से पहले ही पूरा हो गया। तब व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, गणेश जी, पूरा महाभारत लिख गया और इस दौरान आप एक शब्द भी नहीं बोले।
और गणेश जी का उत्तर तो और भी अद्भुत था।
उन्होंने कहा, भगवान, इसी संयम के कारण हम लोग वर्षों का कार्य कुछ ही दिनों में पूरा कर पाए। बातों में समय नष्ट करने से काम में देरी होती है।
क्या बात है, मतलब चुप्पी और एकाग्रता में इतनी शक्ति है कि सालों का काम दिनों में हो सकता है।
हाँ, इसका सार यही है कि अपने काम में पूरी तरह डूबकर और व्यर्थ की बातचीत से बचकर शांत रहना समय संयम का सबसे बड़ा रूप है।
चलिए अब तीसरे संयम पर आते हैं। समय और इंद्रियों को तो शायद हम फिर भी साध लें, लेकिन विचारों का क्या करें? ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते जाते रहते हैं,
इन्हें कैसे रोका जाए,
है ना?
हाँ, पूज्य गुरुदेव इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने नहीं देना चाहिए।
आवारा कुत्तों की तरह?
जी, उन्हें एक मर्यादा में, एक सीमा में बांधकर सृजनात्मक कामों में लगाना चाहिए।
पर ये अभ्यास कैसे हो? मन को रोकना तो सबसे मुश्किल कामों में से एक माना गया है।
इसके लिए सत्संकल्प में एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है। हमें अपने मन में पहले से ही सद्विचारों की एक सेना तैयार रखनी चाहिए।
एक सेना?
हाँ, जैसे ही कोई निरर्थक, अनुपयोगी या नकारात्मक विचार मन में उठे, ये सद्विचारों की सेना उससे जूझ पड़े और उसे खदेड़कर बाहर कर दे।
अपने ही मन में सद्विचारों की एक सेना तैयार रखना, ये कल्पना ही कितनी शक्तिशाली है। मतलब नेगेटिविटी आने से पहले ही आपका अपना डिफेंस सिस्टम उसे बाहर कर दे।
बिल्कुल, एक तरह का मेंटल एंटीवायरस।
हाँ, सही शब्द है, मेंटल एंटीवायरस।
एक और बेहतरीन उपमा दी गई है चिड़ियाघर की।
अच्छा,
जैसे चिड़ियाघर में जानवर एक बड़े बाड़े में घूम फिर तो सकते हैं पर उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक यही नीति हमें अपने विचारों के साथ भी बरतनी चाहिए।
मतलब उन्हें एक उपयोगी दिशा में सीमित रखना चाहिए।
जी, जहाँ तहाँ बिखरने नहीं देना चाहिए। मनोनिग्रह का यही अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की गारंटी है।
ठीक है, तो हमने इंद्रिय, समय और विचारों को साधने की बात की।
हाँ,
लेकिन एक चीज है जो इन सबको प्रभावित करती है और वो है पैसा,
अर्थ।
हाँ, हमारा चौथा संयम अर्थ संयम। सत्संकल्प कहता है कि पैसे को समाजोपयोगी सामर्थ्य मानना चाहिए। इसका असल में क्या मतलब है?
इसका अर्थ है कि धन को केवल व्यक्तिगत संपत्ति ना मानकर एक ऐसी क्षमता के रूप में देखना जो समाज के काम आ सके, क्योंकि धन हमारे परिश्रम और मनोयोग का ही तो फल है, है ना? इसका अपव्यय यानी इसे फिजूल में खर्च करना या फिर अनीति से कमाना, दोनों ही तरीके घर में दुष्प्रवृत्तियों को निमंत्रण देते हैं।
तो बुद्धिमानी किसमें है? न ज्यादा जमा करने में, न ज्यादा उड़ाने में। सत्संकल्प का रास्ता क्या है?
सत्संकल्प का रास्ता है संतुलन। बुद्धिमानी ना तो अनावश्यक संचय में है, न ही अपव्यय में। यहाँ समुद्र का एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है।
समुद्र का?
हाँ, समुद्र नदियों से मिले जल का संचय नहीं करता, वो उसे मेघ बनाकर बरसा देता है। बदले में नदियाँ दुगना जल लेकर उसके पास लौटती हैं।
अरे वाह!
अगर समुद्र भी कंजूस हो जाए और पानी जमा करने लगे तो नदियाँ सूख जाएंगी और धरती पर अकाल पड़ जाएगा। यही नीति धन के लिए भी होनी चाहिए।
समुद्र वाला उदाहरण बहुत सुंदर है, लेकिन आज की दुनिया में एक आम इंसान को तो भविष्य की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, इन सबके लिए पैसा जमा करना ही पड़ता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
तो क्या सत्संकल्प बचत करने को गलत मानता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्संकल्प बचत का विरोधी नहीं है, बल्कि वो अपव्यय और कृपणता यानी कंजूसी का विरोधी है। जरूरत के लिए बचत करना तो एक कर्तव्य है।
अच्छा।
लेकिन आडंबर, दिखावा, फैशन और भव्य विवाहों में जो अनावश्यक खर्च होता है, सत्संकल्प उस पर चोट करता है।
हाँ, और आजकल तो दिखावे का दबाव इतना ज्यादा है, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, डेस्टिनेशन वेडिंग।
बिल्कुल। सत्संकल्प में इसी के लिए लक्ष्मी और माया का भेद समझाया गया है।
लक्ष्मी और माया?
हाँ, जब धन अच्छे कामों में, जरूरतों को पूरा करने में लगता है तो वो लक्ष्मी है, लेकिन जब उसका अपव्यय होता है या उसे अनीति से कमाया या खर्च किया जाता है तो वही धन माया बन जाता है। और सत्संकल्प स्पष्ट कहता है, माया का नाश निश्चित है।
तो इन चारों संयमों को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज साफ हो रही है, संयम का मतलब सिर्फ ना कहना या खुद को रोकना नहीं है।
आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है।
ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है।
यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। संयम का एक पक्ष जहां अनावश्यक अपव्यय को रोकना है, वहीं दूसरा और ज्यादा जरूरी पक्ष है उस बचाई हुई शक्ति को सृजनात्मक अच्छे कामों में लगाना।
वाह, मतलब ऊर्जा का संरक्षण और फिर उसका सही दिशा में निवेश। जैसे एक बांध नदी के पानी को सिर्फ रोकता नहीं है, बल्कि उसे इकट्ठा करके बिजली बनाने के काम में लाता है।
बहुत सुंदर उपमा है।
संयम भी हमारे जीवन का वही बांध है जो हमारी इंद्रियों, समय, विचार और धन की ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकता है
और किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। हमारी कोई भी सामर्थ्य तभी बेहतरीन परिणाम देती है जब उसे अस्तव्यस्तता से बचाकर सत्प्रयोजनों में यानी अच्छे उद्देश्यों में लगाया जाए।
तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने देखा कि इंद्रिय, समय, विचार और अर्थ, इन चारों क्षेत्रों में संयम का अभ्यास जीवन को संतुलित और सफल बनाने की एक प्रैक्टिकल कुंजी है।
जी,
ये खुद से एक लड़ाई जरूर है जैसा हमने शुरू में कहा था, लेकिन इसका इनाम सुख, स्वास्थ्य और सच्ची संपन्नता है।
और इस संयम को साधने में सबसे बड़ी बाधा, जैसा पूज्य गुरुदेव ने संकेत दिया है, इसके सही स्वरूप को न समझ पाना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, इसके लिए निरंतर अभ्यास और ईमानदार प्रयास की जरूरत होती है।
इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। संयम का असली अर्थ है ऊर्जा को बचाकर सृजन में लगाना। तो क्यों ना सोचा जाए कि इन चार शक्तियों में से किसी एक को, जिसे हम आज सबसे ज्यादा व्यर्थ कर रहे हैं, उसे बचाकर किसी एक छोटे से रचनात्मक या सार्थक काम में कैसे लगाया जा सकता है। पहला कदम क्या हो सकता है?